بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متر، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کر رہے ہیں۔ آج اب سورہ واقعہ کی آتما کو شانتی پردان کرنے والی پہلی سے لے کر سولہویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگیے محمد صدیق منشاوی۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، جب وہ گھٹت ہونے والی مہان گھٹنا ارتھات قیامت گھٹ جائے گی اور اس کے گھٹت ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، وہ گھٹنا الٹ پلٹ کر دینے والی ہوگی، اس سمے دھرتی کو بھوکمپ کے زبردست جھٹکے لگیں گے اور پہاڑ ٹوٹ کر چور چور ہو جائیں گے، تو وہ بکھری ہوئی دھول ہو کر رہ جائیں گے، اور تم لوگ تین پرکار کے ہو جاؤ گے، تو داہنے ہاتھ والے، اور کیا کہنا داہنے ہاتھ والوں کا، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیسے دربھاگی ہوں گے بائیں ہاتھ والے، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے بڑھ جانے والے ہی ہیں، وہی اللہ کے نکٹ ورتی ہیں، وہ سورگ کے نعمت بھرے باغوں میں ہوں گے، اگلوں میں سے تو بہت سے ہوں گے اور کچھ پچھلوں میں سے بھی ہوں گے، جو موتی اور یاقوت جڑے تختوں پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ برابر 9620 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ آج رویوار ہے، حاضر کی 13، جمادی الاولی کی 9 اور دسمبر کی 4 تاریخ۔ اس سبھا میں پرسارت ہونے والے کارکرم اس پرکار ہیں۔ سب سے پہلے آپ سنیں گے وشو سماچار، اس کے بعد انمول باتیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے راجنیتک چرچا، اور راجنیتک چرچا کے بعد آپ سنیں گے قرآن ایشور چمتکار، اور انتم کارکرم ہوگا آج کل۔ تو شروتاؤ، تازہ اور وستت خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ اب آپ سید میسم اور مریم مہردادی سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایران میں اسرائیل کے 4 ایجنٹوں کو پھانسی دے دی گئی۔ نئی دلی میں اسرائیلی راجدوت کو ترنت بھارت چھوڑنے کی دھمکی ملی ہے۔ پہچان ظاہر ہونے کے بعد اسرائیلی فوجی کو قطر سے الٹے پاؤں لوٹنا پڑا ہے۔ نیشنل انٹرس ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ دوسرے گرہ یدھ کی اور بڑھ رہا ہے۔
ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے 4 اپرادھیوں کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ ایران کی اسلامی کرانتی فورس IRGC کے جن سمپرک وبھاگ نے زائونی شاسن کی جاسوسی ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کرنے والے 4 ایجنٹوں کی گرفتاری کی سوچنا دی تھی، جس جاسوسی ٹیم کا ایران کی خفیہ ایجنسیوں نے بھنڈا پھوڑ کیا تھا اسے اسرائیل کی جاسوسی ایجنسیوں نے دیش میں سارجنک اور نجی سمپتیوں کو نقصان پہنچانے، اپہرن کرنے اور شانتی ویوستا کو بھنگ کرنے کا آدیش دیا تھا۔ جن 4 اسرائیلی ایجنٹوں کو پھانسی دی گئی ہے، ان کی گرفتاری میں IRGC کی خفیہ یونٹ نے بھی اہم بھومکا نبھائی تھی۔ یہ ایجنٹ اسرائیلی جاسوسی ایجنسیوں کے ادھیکاریوں سے دشا نردیش پراپت کر رہے تھے۔ زائونی شاسن ان ایجنٹوں کو کرپٹو کرنسی کے ذریعے پیسہ پہنچا رہا تھا۔ پراپت رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے ان ایجنٹوں کا پہلے سے ہی پولیس ریکارڈ خراب تھا اور ان کے خلاف کئی مقدمے درج تھے۔ ایران کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے انوسار اسرائیل کے 4 ایجنٹوں حسین اردو خانزادے، شاہین ایمانی محمود آباد، میلاد اشرفی اور منو چہر شہبندی کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے اور لوگوں کا اپہرن کرنے کے جرم میں دوشی پایا گیا تھا۔
امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ایسا کوئی پرمان نہیں ہے جو اس بات کا سوچک ہو کہ ایران پرمانو ہتھیار بنا رہا ہے۔ سماچار ایجنسی ایرنا کی رپورٹ کے انوسار شنیوار کو امریکہ کے نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر
एवरल हेंस ने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो इस बात का सूचक हो कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने का निर्णय किया हो। हेंस ने अपने बयान के एक भाग में उत्तरी कोरिया के संबंध में कहा कि ये देश जानता है कि चीन इस बात को पसंद नहीं करता है कि परीक्षण करने के कारण प्योंगयांग को दंडित किया जाए। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्रपति इस बात के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना से मुकाबले के लिए पश्चिमी देशों से किसी बेहतर वैक्सीन को कबूल करें। उन्होंने मॉस्को और बीजिंग के मध्य सहयोग के बारे में भी कहा कि चीन यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है, परंतु बीजिंग मॉस्को का सैन्य समर्थन नहीं कर रहा है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन में युद्ध के कम होने के साक्षी हैं। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर एवरल हेंस ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को परिवर्तित नहीं किया है और कम से कम जिस चीज़ को मैं देख रही हूं वो यह है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी भविष्यवाणी यह है कि अगले महीनों में धीमी गति से यूक्रेन युद्ध जारी रहेगा।
इसराइली राजदूत नोर गिलोन को ट्विटर पर भारत छोड़ने की धमकी मिली है। इसराइली राजदूत ने ट्विटर पर एक मैसेज शेयर किया है जिसमें उन्हें धमकी भरा मैसेज लिखा गया है। इसराइली राजदूत ने द कश्मीर फाइल्स पर चल रहे विवाद पर भारत के लोगों से माफी मांगी थी। एक इसराइली फिल्मकार द्वारा द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर की गई टिप्पणी पर राजदूत ने फिल्मकार के तरफ से माफी मांगी थी। इसके बाद इसराइली राजदूत को ट्विटर पर धमकी मिली है जिसका उसने स्क्रीनशॉट शनिवार को ट्विटर पर पोस्ट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि हिटलर एक महान व्यक्ति था। इसराइली राजदूत ने उसे यह मैसेज ट्विटर पर मिला है। इसराइली राजदूत ने लिखा कि मैसेज भेजने वाले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं उसकी पहचान छिपा रहा हूं। उसकी प्रोफाइल में PhD लिखा गया है। इसराइली राजदूत ने बताया कि मैसेज शेयर करने का उद्देश्य केवल यह बताना था कि आज भी लोगों में यहूदी विरोधी भावनाएं मौजूद हैं, हमें मिलकर इसका विरोध करने की जरूरत है।
इसराइल ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी संघर्षकर्ताओं के ठिकानों पर हमला किया था जिसके जवाब में फिलिस्तीनी संघर्षकर्ताओं ने गाजा पट्टी के समीप रहने वाली जायनी बस्तियों और इसराइल के सैन्य ठिकानों की ओर कई रॉकेट फायर किए। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीनी संघर्षकर्ताओं ने 2 रॉकेट सोफा नाम की सैनिक छावनी की ओर फायर किया है। इसराइली सैनिकों ने बल देकर कहा है कि गाजा पट्टी के निकट ज़ायनी कॉलोनियों में खतरे के सायरन सुने गए। इसराइली सेना ने ऐलान किया है कि गाजा पट्टी की ओर से रॉकेट फायर किए जाने के बाद ज़ायनी शासन की वायुसेना ने गाजा पट्टी में हमास से संबंधित 2 ठिकानों पर बमबारी की है। ज़ायनी शासन के युद्धक विमानों ने आज रविवार की सुबह भी गाजा पट्टी में फिलिस्तीन के प्रतिरोधक गुटों के ठिकानों पर कई बार बमबारी की जिसके बाद फिलिस्तीनी संघर्षकर्ताओं ने गाजा पट्टी के निकट ज़ायनी कॉलोनी और इसराइल के सैन्य ठिकानों की ओर कई रॉकेट फायर किए। इसी बीच हमास ने कहा है कि इसराइल के आतंकवादी हमलों से फिलिस्तीन जनता का इंतफाजा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने इसराइल के इन हमलों की प्रतिक्रिया में कहा है कि इसराइली हमलों का जवाब इस बात का सूचक है कि प्रतिरोध कभी भी इसराइल को समीकरण बदलने की अनुमति नहीं देगा और हमेशा अपने राष्ट्र की प्रतीक्षा जारी रखेगा।
एक इसराइली सैनिक जो कॉमेडी कलाकार के रूप में कतर पहुंचा था, सोशल मीडिया पर अपनी पहचान जाहिर होने के बाद वहां से भाग खड़ा हुआ है। रविवार को अल खलीज अल जदीद न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी मूल के अमरीकी पत्रकार समर दहमश ने ट्विटर पर इसराइली सैनिक की असली पहचान जाहिर करते हुए लोगों को बताया कि हुखमन इसराइली सेना से सेवानिवृत्त सैनिक है जो एक कलाकार के रूप में दोहा की यात्रा पर है। 1,71,000 फॉलोअर वाले इस पत्रकार के खुलासे के बाद इसराइली सैनिक ने तुरंत कतर छोड़ दिया। दहमश का कहना था कि ये सैनिक भी दूसरे ज़ायोनी सैनिकों की तरह फिलिस्तीनियों के दमन और उनके खिलाफ अमानवीय अत्याचारों में भागीदार रहा है, इसलिए आम लोगों की तरह उसकी मेज़बानी नहीं होनी चाहिए। इसराइली समाचार सूत्रों का कहना है कि हुखमन फीफा वर्ल्ड कप के आखिर तक दोहा में रहने का इरादा रखते थे, लेकिन उनकी असली पहचान का खुलासा होने के बाद उन्हें तत्काल रूप से कतर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख जनरल आसिम ने कहा है कि उनकी सेना भारत के साथ जंग को तैयार है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख का यह बयान 3 दिसंबर को आया जब भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर उनके देश पर हमला होता है तो पाकिस्तानी सेना न केवल अपने देश की एक एक इंच भूमि की रक्षा करेगी बल्कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष बनने के बाद भारत को लेकर पहली बार मुनीर ने इस प्रकार की टिप्पणी की है। मुनीर की टिप्पणी ठीक उसी दिन आई है जब पाकिस्तान ने 1971 में ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी 1 दिसंबर को कहा था कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को लेकर हुई लड़ाई में भारतीय सेना से मिली शर्मनाक हार पाकिस्तानी सेना की बड़ी विफलता थी। उन्होंने ये टिप्पणी पाकिस्तानी सेना के पूर्व प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर निशाना साधते हुए की जिन्होंने भारत से मिली हार को पाकिस्तान की राजनीतिक विफलता करार दिया था। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने रिटायरमेंट के दिन रावलपिंडी में सेना मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में 1971 के युद्ध का जिक्र किया था। जनरल बाजवा ने कहा था कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की ओर से 93,000 नहीं केवल 34,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, बाकी लोग अलग अलग सरकारी विभागों से थे।
नेशनल इंटरेस्ट वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हिंसा और आतंकवादी कार्रवाइयों के क्रम को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस देश में दूसरे गृह युद्ध की शुरुआत हो रही है। नेशनल इंटरेस्ट का कहना है कि प्रदर्शन और उसका विरोध, श्वेत वर्चस्ववादियों द्वारा हिंसा को हवा देना और दक्षिणपंथी राजनेताओं का लोगों को भड़काना सड़कों पर और स्कूलों में माहौल को खराब कर रहा है। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में किस तरह गृह युद्ध या नागरिक युद्ध शुरू होता है शीर्षक के तहत प्रकाशित एक लेख में बारबरा वॉल्टर ने लिखा था कि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है या ये नागरिक युद्ध की ओर बढ़ रहा है। हालांकि कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि अमेरिका में दूसरा गृह युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच भयानक गृह युद्ध हुआ था। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो हिंदी है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
अनमोल बातें।
दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम सुप्रीम लीडर की नजर में इस्लामी क्रांति और जैनबी क्रांति के विषय पर चर्चा करेंगे। रविश जैदी का सलाम स्वीकार करें। दोस्तों, इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामनाई इस्लामी क्रांति को हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा की क्रांति करार देते हैं और क्रांति के दौरान महिलाओं की गतिविधियों और कार्रवाइयों को हजरत जैनब की कार्रवाइयों की भांति बताते हैं। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि हमारी क्रांति हजरत जैनब की क्रांति है। क्रांति की शुरुआत से ही इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में महिलाएं भी रही हैं। महिलाओं ने क्रांति की बड़ी घटना में भी और पवित्र प्रतिरक्षा काल की बड़ी घटना में भी माओं की भूमिका, पत्नियों की भूमिकाएं निभाई हैं। अगर संघर्षकर्ताओं और मुजाहिदों की भूमिकाएं बहुत ज़्यादा कठिन थीं, सबसे दुखद और सबसे ज़्यादा परेशानियाँ बर्दाश्त करने वाली नहीं थीं, तो निश्चित रूप से महिलाओं की भूमिकाएँ भी कम नहीं थी। اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کہتے ہیں کہ وہ ماں جو اپنے جوان بیٹے کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنی آنکھوں کے تارے کو، اپنے دل کے چین کو، اپنے چمن کے پھول کو، اپنے 18 سال کے کڑیل جوان کو، اپنے 20 سال کے نوجوان کو، اس سے کم یا زیادہ عمر کے جوان کو جس کا اس نے لالن پالن کیا، پال پوس کر جسے اس نے بڑا کیا، اب اسے میدان جنگ کی اور بھیج رہی ہے۔ اسلامی کرانتی کے ورش نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کہتے ہیں کہ ماؤں کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے جگر کے ٹکڑے کی لاش واپس آئے گی بھی کہ نہیں، یہ کہاں اور خود اس نوجوان کا جانا کہاں۔ ٹھیک ہے کہ یہ نوجوان جوانی کے جوش اور ولولے میں ایمان کے جذبے سے اپنی کرانتیکاری بھاوناؤں کے تحت بڑھتا ہے اور جاتا ہے۔ سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ یہ کام اس نوجوان کے کام سے اگر بڑا نہیں ہے تو چھوٹا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اس کی لاش کو لایا جاتا ہے تو ماں گرو کرتی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہوا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی کم چیز نہیں ہے۔ یہ مہیلاؤں کی کاروائیاں ہماری کرانتی میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے کام جیسی تھیں۔ دوستوں، کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں انومتی دیں۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز۔
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा के साथ उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। मानवाधिकारों को अमेरिका ने फिर बनाया दबाव का मुद्दा। इसराइल के साथ तुर्की के बढ़ते संबंध और कश्मीर में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता के प्रतिनिधि का संबोधन। दोस्तों, ये वे मुद्दे हैं जिन पर कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि दुनिया जानती है कि मानवाधिकारों के विषय का दुरुपयोग करते हुए अमेरिका ने हमेशा इसको दूसरे देशों पर दबाव के लिए ही प्रयोग किया है। इस बार ईरान पर दबाव डालने के लिए इसका प्रयोग एक दूसरे आयाम से किया जा रहा है। विस्तार से बता रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
ईरानी संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के एक सदस्य ने कहा है कि परमाणु वार्ता को पटरी से उतारने के लक्ष्य से पश्चिम तेहरान पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगा रहा है, जबकि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के हनन के संबंध में सबसे लंबा और काला इतिहास जानी शासन अमेरिका और यूरोप का है। जलाल रहीमी जहानाबादी ने पत्रकारों के साथ वार्ता में कहा कि ईरान के साथ पश्चिम की परमाणु वार्ता का नतीजा उसकी इच्छा के अनुसार नहीं रहा, क्योंकि पश्चिम परमाणु वार्ता में ईरान पर अपने दृष्टिकोणों को थोपने की चेष्टा में था कि ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों और मिसाइल कार्यक्रम को सीमित कर दे। जानकार हलकों का मानना है कि जब अमेरिका, पश्चिम और यूरोपीय देशों ने देख लिया कि परमाणु वार्ता में न तो ईरान पर अपने अतार्किक दृष्टिकोणों को थोप सकते हैं और न ही कोई विशेषता ले सकते हैं, तो उन्होंने मानवाधिकार को ईरान पर दबाव डालने का बेहतरीन हथकंडा समझा और इसी को वे इस समय पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं। रोचक बात यह है कि पश्चिमी व यूरोपीय देश ईरान में उपद्रवियों का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें क्रांतिकारी और बहादुर बता रहे हैं, पर जब अपने ही देशों में होने वाले प्रदर्शनों की बात आती है तो इन देशों की पुलिस बड़ी ही निर्ममता से प्रदर्शनकारियों को मारती और उनका दमन करती है। फ्रांस और ब्रिटेन में सरकार विरोधी होने वाले प्रदर्शनों और प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाइयों को इसी दिशा में देखा जा सकता है। यही नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कानून का उल्लंघन करने वाले प्रदर्शनकारियों को पुलिस की शक्ति का आभास होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पुलिस का समर्थन करता हूँ। दूसरे शब्दों में, जब पश्चिमी देशों में प्रदर्शन वहां की सरकारों के खिलाफ होते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ध्यान देने के बजाय उनके दमन के लिए पुलिस के समर्थन पर बल देते हैं और स्वयं को मानवाधिकारों की रक्षा और आजादी का ठेकेदार बताते हैं। अमेरिका ने वर्ष 1945 में जापान के दो नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी करके 2,00,000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया और आज तक उसने इस जघन्य अपराध के लिए माफी तक नहीं मांगा। इराक और अफगानिस्तान पर आतंकवाद और सामूहिक विनाश के हथियारों से मुकाबले के बहाने हमला करके 10,000 लोगों की हत्या कर दी। इसी प्रकार अमेरिका सीरिया में आतंकवाद से मुकाबले के बहाने वहां का तेल निकाल रहा है और इस देश में अमेरिका और आतंकवादियों के हमले में 1,00,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और इस देश के बहुत से इलाके खंडहर बन चुके हैं। ये सब अमेरिकी मानवाधिकार और उसके क्रियाकलापों के मात्र कुछ नमूने हैं। ज़ारी शासन 73 साल से अधिक समय से फिलिस्तीनियों का खून बह रहा है, उनकी अधिकांश जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है, लगभग 1,00,000 फिलिस्तीनियों की हत्या कर चुका है और 40,00,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से निकाल दिया है और उन्हें स्वदेश वापस आने की अनुमति भी नहीं दे रहा है। इसी तरह मानवाधिकारों के हनन में पश्चिम और यूरोपीय देशों का अतीत बहुत लंबा है। ब्रिटेन ने दुनिया के बहुत से देशों पर कब्जा किया, वहां के स्रोतों को खूब लूटा और वहां के स्थानीय लोगों की हत्याएं की। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटेन की करतूतों को एक छोटे नमूने के तौर पर देखा जा सकता है। बहरहाल अमेरिका, ज़ारी शासन और यूरोपीय देशों ने मानवाधिकारों के हनन में अपना एक रिकॉर्ड कायम कर रखा है और ईरान पर दबाव डालने के लक्ष्य से उस पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप बढ़ रहे हैं।
तुर्की का कहना है कि इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने को फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ विश्वासघात के रूप में बिल्कुल भी न देखा जाए। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि तुर्की के नेता ज़ायोनियों के साथ सांठगांठ की ट्रेन पर हमेशा से ही सवार रहे हैं। एक समीक्षा लेकर उपस्थित है अख्तर अब्बास।
ऐसी हालत में कि जब कई इस्लामिक देशों और तुर्की की मुस्लिम जनता ज़ायोनी शासन के साथ संबंधों को फिर से बहाल करने के बारे में तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की कार्रवाई को गलत मानती है, तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि तुर्की इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के साथ ही फिलिस्तीनी जनता के हितों और उनकी उमंगों की रक्षा भी करेगा। इटली की राजधानी में बोलते हुए तुर्की के विदेश मंत्री ने ये भी दावा किया कि इसराइल के साथ तुर्की के संबंधों के सामान्यकरण को फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ विश्वासघात या इस देश की जनता के लिए हानिकारक बताना गलत है। तुर्की के इस सीनियर नेता ने नस्ल भेदी इसराइल के साथ संबंधों को फिर से बहाल करने के बारे में अंकारा के अधिकारियों की हालिया कार्रवाइयों को सही ठहराने की कोशिश जारी रखी और तुर्की और इसराइल के बीच संबंधों के सामान्यीकरण को दोनों पक्षों और पूरे क्षेत्र के हित में करार दिया। अपने हालिया स्पष्टीकरणों के बावजूद तुर्की के सीनियर नेता ने ये स्पष्ट नहीं किया कि ज़ायोनी शासन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के तुर्की के इस कदम से फिलिस्तीन की मजलूम जनता को क्या लाभ होगा। इसी मध्य दोनों पक्षों के बीच संबंधों को सामान्य करने का मुद्दा उठाने के बाद ज़ायोनी शासन ने अर्दोगान सरकार के लिए अपनी पहली शर्त का ऐलान करते हुए अंकारा से तुर्की में स्थित सभी फिलिस्तीनी संगठनों की गतिविधियों को रोकने के लिए कहा है। जाहिर सी बात है, अर्दोगान की सरकार ने भी इस मामले में तेजी से काम किया है। इस बीच कुछ साक्ष्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि तुर्की और नस्ल भेदी ज़ायोनी शासन के बीच संबंधों में कभी भी वास्तविक तनाव नहीं रहा है। इस संबंध में विशेषज्ञ कहते हैं कि तुर्की के नेता ज़ायोनी शासन के साथ सांठगांठ करने की ट्रेन से कभी भी उतरे ही नहीं हैं और वे پھر سے اس پر سوار ہونا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی یہ کہنا چاہیے کہ رجب طیب اردوغان سرکار کا اسرائیل کے ساتھ سمبندوں کو پھر سے شروع کرنے کا پریاس انکارا ادھیکاریوں کے ایجنڈے میں ایسی استھتی میں شامل ہوا ہے کہ جب سترول جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے نیتا ترکی کے راشٹر ہتوں کے وپریت حال ہی میں سیریا کے ساتھ مدبھیدوں کو سماپت کرنے کے لیے ہچکچاہٹ کے ساتھ قدم اٹھا رہے ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
اور شوتاؤ، اب رخ کرتے ہیں ہم بھارت کا۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا کے پرتندھی کہتے ہیں کہ کروڑوں ڈالر خرچ کر کے اور دشپرچار کرنے کے باوجود بھی ایران کے شترو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ سری نگر سے سپتے محمد حسن کی رپورٹ۔
رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنہ مدرز اللہ علیہ کے دوت برائے بھارت نے کہا ہے کہ اسلامی گنتنتر ایران میں جو گھٹنائیں گھٹی ہیں اس کو بڑا چڑھا کر ایک شریانتر کے تحت انقلاب اسلامی کو کمزور کرنے کا جو پریاس کیا گیا، جس میں یورپ نے اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی، اسلامی گنتنتر ایران کے ناگرکوں نے اسے اسفل بنا کر انہیں ایک سبق سکھایا ہے۔ سری نگر میں مانیہ دھارمک اور راجنیتک نیتا اور اتحاد المسلمین کے بانی مرحوم مولانا محمد عباس انصاری کی سوگ سبھا، جس میں گاٹھی کے وبھن چھیتروں سے آئے ہوئے ہزاروں لوگوں نے بھاگ لیا، کو باشن دیتے ہوئے اوقائی مہدی مہدوی پور نے اپنے باشن میں کہا کہ اسلام اور اسلام کے پیروکاروں کے ورودھ جتنے بھی شریانتر اسلامی گنتنتر ایران میں رچائے گئے وہ لوگوں نے اسفل بنا دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پروپیگنڈا وار ہے اور اس میں میڈیا بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے، پرنتو لوگوں نے ان کا ہر ایک شریانتر اسفل بنا دیا۔ اس اوسر پر انہوں نے لوگوں پر بھی بل دیا کہ وہ اپنی زندگی کو اسلام کے آفاقی اصولوں کے تابع رکھیں، اسی میں ان کی دین و دنیا کی بقا مضمر ہے۔ اکائی مہدوی مہدوی پور نے امریکہ اور اس کے سمرتھک دیشوں پر آروپ لگایا کہ وہ مکرو پروپیگنڈا کر کے اسلامی گنتنتر ایران میں اشانتی پھیلانے کا پریاس کر رہے ہیں، پرنتو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اس میں کبھی بھی سفل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی گنتنتر ایران میں شانتی ہے اور جو گھٹنائیں گھٹی تھی وہ ایک معمولی قسم کی تھی، پرنتو انہیں ایک پروپیگنڈا کے انوسار بڑا چڑھا کر پیش کرنے کا پریاس کیا گیا۔ انہوں نے اپنے بھاشن میں کہا
رسانه ها و یک جنگ رسانه‌ای علیه ایران را انداختن در سطح آسر۔
اس اوسر پر لوگوں نے جذباتی انداز میں اسلامی گنتنتر ایران اور رہبر معظم کے پکش میں جذباتی انداز میں نعرہ بازی کی۔ سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔
یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں۔ پرستوت ہے اگلا کاریکرم انمول باتیں۔
قرآن ایشوری چمتکار۔
پری شروتاؤ کارکرم قرآن ایشوری چمتکار کی ایک انیک کڑی لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں، آشا ہے پسند کریں گے۔ آئیے پہلے سورہ انبیاء کی 51 اور 52 آیتوں کی تلاوت سنیں۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔
اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو بودھک پرگتی پردان کر دی تھی اور ہم ان کی یوگیتاؤں کو بھلی بھانتی جانتے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی جاتی کے لوگوں سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی اپاسنا پر تم جمع ہوئے ہو۔
اس سے پہلے بتایا گیا کہ سورے میں 16 ایشوری پیغمبروں کے جیون کی اور سنکیت کیا گیا ہے۔ ان پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وشیش استھان ہے، اور ان کے تتھا مورتی پوجا کرنے والوں کے بیچ ہونے والی بات چیت اس سورے کی کئی آیتوں میں موجود ہے۔
ان آیتوں کے آرمب میں کہا گیا ہے کہ ایشور پیغمبری کا دائتو سنبھالنے ہیتو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یوگیتا و کشمتا سے اوگت تھا، اتا اس نے ان کی بودھک پرگتی ایوم وکاس کے سادھن انہیں اپلبدھ کرائے۔ ان کی یوگیتا کا چن یہ تھا کہ انہوں نے کشوراوستھا میں ہی اپنی جاتی کے لوگوں سے کہا کہ وہ کیوں نرجیو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اور رات دن ان کے سمکش جھکے رہتے ہیں۔
اسپشٹ ہے کہ وہی ویکتی بڑا ہو کر ایشوری پیغمبری کا بھاری دائتو اٹھا سکتا ہے اور لوگوں کو انیک ایشورواد ایوم اندھ وشواس سے مکتی دلانے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے جو کشوراوستھا میں بھی اپنی جاتی کے بڑے لوگوں کے سامنے اس پرکار درڑھتا کے ساتھ بات کر سکتا ہو۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ ایشور کسی کو بھی تب تک کوئی انوکمپا نہیں دیتا جب تک اس میں اس کی پراپتی کی اکشمتا نہیں ہوتی۔
لوگوں کو اپدیش دینے اور ان کے مارگ درشن کا کام اپنے نکٹورتی لوگوں اور پریجنوں سے آرمبھ کرنا چاہیے۔
سب سے بڑا پاپ انیکیشورواد ہے، اور دھرم کا پرچار کرنے والوں کو ہر بات سے پورو اس سمسیا پر دھیان دینا چاہیے۔
آئیے اب سورہ انبیاء کی 53 اور 54 آیتوں کی تلاوت سنیں۔
قالوا وجدنا
انیکیشور وادیوں نے اتر میں کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہیں کی اپاسنا کرتے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، نشچت روپ سے تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی پد بھرشتتا میں رہے ہو۔
انیکیشور وادیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسپشٹ پرشن کے مقابلے میں کہ تم کس ترک کے آدھار پر ان وستوؤں کی اپاسنا کرتے ہو، ان کے پاس اس کے اترکت کوئی اتر نہیں تھا کہ یہ ہمارے پوروجوں کی ریتی و پرمپرا رہی ہے اور ہم اپنے آپ کو اس بات کی انومتی نہیں دے سکتے کہ ان کے مارگ سے ہٹ جائیں۔ جبکہ اس بات کا کوئی ترک نہیں ہے کہ پوروجوں سے غلطی نہیں ہو سکتی، یا یہ کہ وہ آنے والی پیڑھیوں سے ادھک بدھیمان ایوم جانکار رہے ہوں، بلکہ ویگیانک معاملوں میں پرائے اس کے وپریت ہی ہوتا ہے اور آج کی پیڑھی پچھلی پیڑھیوں کی تلنا میں ادھک جانکار ہے۔
یہی کارن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ترکہین اتر پر پرتکریا جتاتے ہوئے کہا کہ یدی تمہارا ترک اپنے پوروجوں کی پرمپرا کا پالن ہے تو اس غلطی میں تم سب بھاگیدار ہو۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ پوروجوں کے انوچت ویوہار کا پربھاؤ بچوں کی پرشکشن پر پڑتا ہے، اور اس سے آگامی پیڑھیوں کی پد بھرشٹتا کا مارگ پرشست ہوتا ہے۔
جاتی و قبائلی پرمپراؤں اور سنسکاروں کے نام پر پوروجوں کے کاریوں کا اندھا انوسرن اور اسی پرکار ان کے غلط کرموں پر بنا کسی ترک کے آگرہ ایک انوچت و ترکہین کاریہ ہے۔
آستھا کے معاملے میں ٹھوس ترک آوشیک ہے، اور پوروجوں کی پرمپرا سویکاریہ ترک نہیں ہو سکتی۔
آئیے اب سورہ انبیاء کی 55ویں اور 56ویں آیتوں کی تلاوت سنیں۔
قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔
انیک ایشوروادیوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس ستیہ و گمبھیر بات لے کر آئے ہو یا یوں ہی کھیل کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تمہارا پالنہار آکاشوں اور دھرتی کا پالنہار ہے جس نے ان کی رچنا کی ہے، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔
مورتی پوجا کے ورد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹھوس باتوں کے کارن کچھ انیکیشور وادیوں نے ان سے یہ پوچھا کہ وہ مذاق میں ان کے پوروجوں کو پد بھرشٹ کہہ رہے ہیں یا وستوتا ان کا یہی وچار ہے، کیونکہ انہیں وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ کسی میں اتنا ساہس ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے پوروجوں کی آستھا کے وپریت بات کرے۔ کنتو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر اپنی آستھا کی گھوشنا کی کہ میری درشٹی میں تمہارا اور سنسار کا پالنہار اننیہ ایشور ہی ہے، اور سرشٹی میں ان مورتیوں کی کوئی بھومکا نہیں ہے۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ ویچارک پد بھرشٹتا کے بارے میں کھل کر اور ٹھوس ڈھنگ سے بات کرنی چاہیے کہ شاید اس پرکار پد بھرشٹ لوگ نشچیتنا کی نیند سے جاگ جائیں۔
جس نے اس سنسار اور منوشیہ کی رچنا کی ہے، اسی کے ہاتھ میں سرشٹی کا سنچالن بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سرشٹی کی رچنا تو اس نے کی ہے، کنتو اس کا سنچالن دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔
یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں۔ شروتاؤ، یہاں پر ایک بھول ہو گئی تھی، اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔ قرآن ایشور چمتکار کی جگہ انمول باتیں جو ہے اس کاریکرم کا اعلان ہو گیا تھا، اس کے لیے ہم کشما چاہتے ہیں۔ اب پرستوت ہے اگلا کاریکرم آج کل۔
آج کل
دوستوں، آج کل میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم ایران کی ارتھ ویوستھا میں روزگار پیدا کرنے والے نالج بیسڈ پروڈکشن کی بھومکا پر چرچا کریں گے۔ اختر رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ دوستوں، ہجری شمسی کیلنڈر کے نئے سال 1401 کی شروعات میں اسلامی کرانتی کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس سال کا نام روزگار پیدا کرنے والا نالج بیسڈ پروڈکشن رکھا تھا۔ سپریم لیڈر دوارا دیے گئے نعرے کے پریپریکش میں آج ہم دو وکست ایشیائی دیشوں جاپان اور دکشن کوریا کی آرتھک پرگتی کے بارے میں چرچا کرنے جا رہے ہیں۔ جب سے جاپان دوتیہ وشو یدھ میں ہارا ہے، تب سے اس نے راشٹریہ ارتھ ویوستھا اور اتپادن کو سمرتھن دینے کے لیے ایک ابھیان آرمب کیا تھا، جس کے بارے میں ابھی بھی کہا جا سکتا ہے کہ تب سے آج تک اس دیش کے لوگ اس راشٹریہ ارتھ ویوستھا اور اتپادن کے ابھیان کے پرتی وفادار ہیں۔ دوتیہ وشو یدھ کی سماپتی اور جاپان میں گٹھبندھن سرکار کے گٹھن کے بعد پروفیسر توسورو شیگوٹو، جو اس دیش میں ویاپک سمنوے سمیتی کے ڈپٹی تھے، نے ایک ادیش پورن درشٹیکون کے ساتھ ایک رپورٹ پرکاشت کی، جسے ابھیان کا ایک بیان مانا جاتا ہے۔ دیش کے اتپادوں کا سمرتھن کرنے کے لیے، اور اسے سچی آرتھک رپورٹ کہا جاتا ہے۔ تو سورو شیگوٹو جاپانی راجنیتک اور ارتھشاستری تھے، انہیں ان کی چھاتروتی کے لیے ویاپک روپ سے سمانت کیا گیا، جس میں انٹرنیشنل اکنامک ایسوسیشن کی پریزیڈنسی بھی شامل ہے۔ انہوں نے کئی ماند اپادھیاں بھی پراپت کی ہیں، جن میں دو میں سے ایک شامل ہے جو کبھی کسی جاپانی ناگرک کو ہارورڈ وشو ودیالیہ دوارا دی جاتی تھی۔ پروفیسر توسورو شیگوٹے کی رپورٹ میں آیا ہے کہ لوگوں کو دیش کی ارتھ ویوستھا کے ساتھ ساتھ اپنی گھریلو آرتھک व्यवस्था की स्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए और अपने आर्थिक व्यवहार और विचारों को समायोजित करना चाहिए, चाहे वो उत्पादन, खपत, बचत, निवेश या आय संतुलन के संदर्भ में हो। इसके साथ खर्च और बचत का समन्वय करें। इस रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ जापानी सरकार के अधिकारियों ने अपने देश के उत्पादन और अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए पहला कदम उठाने की कोशिश की। इस रिपोर्ट ने जापानी नागरिकों की कुचली हुई भावनाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। श्री गोटो अपने देश के लोगों को घरेलू शक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता के बारे में आगाह करना चाहते थे। प्रोफेसर तुसुरु द्वारा की गई अपील जापान सरकार के लिए भी प्रेरणा का कारण बनी और उसने देश की जनता को भी इसी ओर प्रोत्साहित किया। साथ ही इसी दृष्टिकोण ने राष्ट्रीय उत्पादन को समर्थन देने की संस्कृति को संस्थागत रूप दिया। इस संबंध में विशेषज्ञों का मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद के दौर से लेकर आज तक जापानी लोग अपने देश के घरेलू और यहां तक के कम गुणवत्ता वाले सामान को विदेशी सामान से ज्यादा पसंद करते हैं। इस देश के लोगों को बचपन से ही शिक्षित किया गया है और राष्ट्रीय उत्पादन को समर्थन देने से संबंधित सांस्कृतिक मुद्दों को उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है। यही वजह है कि आज की दुनिया की नई परिस्थितियों में कि जब चीनी उत्पादों का बोलबाला है, जापान की जनता ने चीन को भी अपने देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की अनुमति नहीं दी। यही कारण है कि जापान की अर्थव्यवस्था एक अत्यधिक विकसित मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है। जीडीपी के हिसाब से जापान दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि क्रय शक्ति समता यानी पीपीपी के अनुसार चौथे नंबर पर है। साथ ही जापान को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विकसित के रूप में जाना जाता है। जापान G7 और G20 का सदस्य है। वर्ष 2021 में जापान के विदेशी व्यापार की कुल मात्रा लगभग 1,529,000,000,000 थी, जिसमें से 785.5 बिलियन डॉलर जापानी निर्यात था और 771.5 बिलियन डॉलर अन्य देशों से जापानी आयात था। रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू पीपीपी 41,637 पर था। अस्थिर मुद्रा विनिमय दर के कारण डॉलर में मापी गई जापान की जीडीपी में तेजी से उतार चढ़ाव होता है। एटलस पद्धति के उपयोग के माध्यम से इन उतार चढ़ाव के लिए लेखांकन जापान का अनुमान है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद लगभग 39,048 डॉलर है। वर्ष 2018 में जापान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आयातक और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश था। इसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसकी कीमत 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। जापान के मुख्य निर्यात में ऑटोमोबाइल विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक, सेमीकंडक्टर्स, वाहन मोटर, लोहा और इस्पात ऑटो पार्ट्स, प्लास्टिक सामग्री और विभिन्न प्रकार की मशीनरी जिनमें बिजली उत्पाद, ऊर्जा उत्पाद आदि शामिल हैं। वर्ष 2021 में जापान के विदेश व्यापार के निर्यात में 18.5% की वृद्धि और 2020 की तुलना में आयात में 21% की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2021 में जापान का लगभग 53% विदेशी व्यापार एशियाई देशों के साथ, 15.5% अमेरिका और कनाडा के साथ, 16% लैटिन अमरीकी और मर्केसुर यानी दक्षिण अमेरिकी देशों का एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन है जिसके सदस्य अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे और पराग्वे हैं। देशों के साथ 12% यूरोप और यूरोपीय संघ के साथ, 5% पश्चिमी एशिया के साथ, 5% ओशियानिया देशों के साथ, लगभग 1.5% रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ, लगभग 1.5% अफ्रीकी महाद्वीप के साथ। इस प्रकार एशियाई देशों को जापान के विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है, क्योंकि 2020 में जापान का लगभग 50% विदेशी व्यापार एशियाई देशों के साथ था। वर्ष 2021 में जापान के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार थे, जिनमें चीन, अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड का नाम लिया जा सकता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था संज्ञात्मक सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की 15वीं और क्रय शक्ति के आधार पर 12वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दक्षिण कोरिया विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह G20 का सदस्य है। ये देश एक उच्च आय वाली विकसित अर्थव्यवस्था है और OECD का भी सदस्य है। दक्षिण कोरिया मूल एशियाई चीतों वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और ये एकमात्र विकसित देश है जिसे नक्ट 11 समूह में सम्मिलित किया गया है। दक्षिण कोरिया 1960 के आरंभ में और 1990 के अंत तक विश्व के सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में था और 2000 के दशक में यह देश विकसित देशों में सर्वाधिक तेजी से विकास करने वालों में देशों में शामिल था। 1960 से 1990 के दशकों के दौरान हुई आश्चर्यजनक प्रगति को कोरियाई लोग हान नदी का चमत्कार की संज्ञा देते हैं। वर्ष 2010 में दक्षिण कोरिया विश्व का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक और 10वां सबसे बड़ा आयातक देश था। ऐतिहासिक रूप से दक्षिण कोरिया आधिकारिक विकास सहायता ODA प्राप्त करने वाला देश था। 1980 के पूरे दशक के दौरान से 90 के दशक के मध्य तक दक्षिण कोरिया की समृद्ध क्रय शक्ति GDP के आधार पर औद्योगिक देशों की अंशमात्र थी। वर्ष 1980 में दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति GDP $2,300 थी, जो निकट के विकसित देशों जैसे सिंगापुर, हांगकांग और जापान का केवल एक तिहाई थी। तब से लेकर दक्षिण कोरिया अब एक विकसित देश में परिवर्तित हो चुका है और 2010 में इसकी प्रति व्यक्ति GDP $30,000 थी, जो 1980 के स्तर से लगभग 13 गुना अधिक है। इसी समय से दौरान पूरे देश का सकल घरेलू उत्पाद भी $88 अरब से बढ़कर $1,460 अरब हो गया। सन 2009 में दक्षिण कोरिया सहायता प्राप्त करने वाले देशों से निकलकर सहायता प्रदान करने वाले देशों में सम्मिलित हो गया। 2008 और 2009 के बीच दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को छोड़कर विभिन्न देशों को $1.7 अरब की सहायता राशि प्रदान की थी। दक्षिण कोरिया द्वारा उत्तर कोरिया को दी जाने वाली वार्षिक आर्थिक सहायता राशि ऐतिहासिक रूप से इसके ODA से दोगुनी रही है। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने वाले कारकों में से एक मुख्य कारण था उत्पादन को मजबूत करने के लिए देश के नेताओं का विशेष ध्यान। इस देश के नेताओं ने उत्पादन में वृद्धि और उसे मजबूत बनाने के उद्देश्य से ऐसे ऐसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जिसमें अनुकूल वित्त पोषण, बड़े उद्योगों की ओर आर्थिक प्रणाली का उन्मुखीकरण, औद्योगिक वरीयता नीति, स्मार्ट व्यवसाय नीति और प्रौद्योगिकी अवशोषण शामिल है। हालांकि विभिन्न ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक तथा सुरक्षा कारणों ने दक्षिण कोरिया की सफलता में भूमिका निभाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की भूमिका मुख्य रूप से रही है। दक्षिण कोरियाई सरकार ने उद्योगों की मदद के लिए एक स्मार्ट तरीका अपनाया है। इसका मतलब यह है कि उद्योगों में निवेश को एक उपकरण के रूप में, जिसे उन्होंने आवश्यक समझा, उसे प्रतिबंधित कर दिया। انہوں نے ان ادیوگوں کی بھی پہچان کی جن میں تیزی سے وکاس کی سمبھاونا تھی۔ विकसित देशों की निर्यात वस्तुओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक बिंदु यह है कि कृषि वस्तुएं इन देशों की सबसे महत्वपूर्ण निर्यात वस्तुओं में से एक है। दुनिया के कई हिस्सों में अनाज के रूप में गेहूं का सेवन अधिक किया जाता है, इसीलिए यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों में से एक है। अधिकांश शक्तिशाली आर्थिक देश अपनी अर्थव्यवस्था के सामरिक और आवश्यक सामानों का आयात न करने और आवश्यकता पड़ने पर अन्य शक्तियों के दबाव में न आने की कोशिश करते हैं और दुनिया के छोटे देशों को उन पर निर्भर बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन में खपत होने वाले खाद्य पदार्थों का लगभग 60% इस देश में तैयार और उत्पादित किया जाता है और कुछ अन्य शक्तिशाली देशों जैसे स्विट्जरलैंड और अमरीका ने भी अपने कृषि क्षेत्र के प्रति संरक्षणवादी नीतियों को अपनाया है जो कि उनकी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के विपरीत है। वर्ष 2018 में वैश्विक गेहूं निर्यात 41.2 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था। वर्ष 2018 में सबसे अधिक गेहूं का निर्यात निम्नलिखित देशों से संबंधित था, रूस 20.5% और 8.4 बिलियन डॉलर, कनाडा 13.8% और 5.7 बिलियन डॉलर, अमेरिका।
تو شروتاؤ، اسی کے ساتھ یہ سبھا یہیں پر سمپن ہوتی ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.